सैदु शिष्य करी सेवा समर्पिला, वो सेवा अपने दो शिष्यों को प्रदान किया। राज सेवा होए तो गोपाल जी की सेवा भव्य स्तर पर हो रही थी। कार के सुस्वादु व्यंजन के भोग प्रतिदिन लगते थे। ब्रजवासियों के दान पुण्य के कारण गोपाल जी की संपत्ति भी प्रचुर मात्रा में हो गई थी। अतः गोपाल जी की सेवा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं था। भक्त का कर्तव्य बनता है कि भगवान की सेवा सम्यक रूप से प्रतिष्ठित होने के पश्चात वो अन्य अपने प्रचार कार्य में लग जाए। तो इसलिए माधवेंद्रपुरी जी वो सेवा राज सेवा होए पुरीर आनंद बढ़िला, अपने दो शिष्यों को प्रदान करके वो उस सेवा के विषय में निश्चिंत हो गए। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, ग्रेट सोल्स वॉन्ट कृष्णास कंफर्ट नॉट पर्सनल कंफर्ट। महान संतों का लक्षण होता है कि वो कृष्ण की सेवा और कृष्ण का आनंद के विषय में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं और निजी सुख शांति के विषय में चिंतन नहीं करते। तो वर्णन आता है कि जैसे बालाजी भगवान के विषय में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है शेषाद्री पर्वत पर, और ये पर्वत का प्राकट्य भी बड़ा विचित्र कथा है। पुराणों में इसका वर्णन आता है कि एक बार वायुदेव भगवान श्री नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में प्रवेश करते हैं और वहां पर शेषनाग जी के साथ उनकी भेंट होती है। दोनों में किसी प्रकार की बहस होती है और दोनों विचार करते हैं कि हम दोनों में शक्तिशाली कौन अधिक है। इस बात को पूरी तरह सिद्ध करने के लिए निजी शक्ति का प्रयोग दोनों करते हैं। आनंदगिरी नाम के पर्वत को लेकर शेषनाग अपने पूंछ उसकी चारों तरफ मोड़कर उसको सुष्टु ढंग से पकड़ लेते हैं और वायुदेव अपने पूरी शक्ति से उसको हिलाने का प्रयास करते हैं। वायुदेव के भरपूर प्रयास करने पर भी वो आनंदगिरी पर्वत तिल मात्र भी स्खलित नहीं होता, लेकिन वायुदेव के इस प्रचंड वेग के कारण पूरे ब्रह्मांड में उत्पात मच जाता है। नाना प्रकार के देवतागण हाहाकार करने लगते हैं। परेशान अवस्था में सब लोग शेषनाग के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए, वायुदेव अपने बाकी उत्तरदायित्व त्याग कर यहाँ पर पूरी तरह लग गए हैं, जिसके कारण बाकियों को समस्या हो रही है। ये परस्पर स्पर्धा पता नहीं कब तक चलती रहेगी। हम निवेदन करते हैं कि कृपा करके आप हार जाइए तो अच्छा होगा। देवताओं का निवेदन सुन के शेषनाग जी ने आनंदगिरी पर्वत पर अपना जकड़ कुछ धीमा कर दिया और तब फिर वायुदेव ने जब पूरी तरह से उस पर जोर दिया तो आनंदगिरी पर्वत शेषनाग के साथ साथ सीधा आया और आज जहाँ वेंकटाद्री है, वेंक अर्थात अमृत और कट अर्थात ऐश्वर्य, अमृत और ऐश्वर्य के भगवान वेंकट अर्थात हमारे जीवन को अमृत और ऐश्वर्य से भर दें, भक्ति के अमृत और भक्ति के ऐश्वर्य से भरपूर कर दें, तो उस स्थान में आ गया और तब से उस पर्वत का नाम हो गया शेषाचल। गौर करने वाली बात है कि वास्तव में शेषनाग जी पराजित हुए थे, लेकिन क्योंकि देवताओं के निवेदन के अनुसार उनकी सेवा हेतु वो पराजित हुए, भले वायुदेव की जीत हुई लेकिन पर्वत का नाम शेषनाग के नाम से जाना गया, शेषाचल, शेषाद्री, नाना प्रकार के उनके नाम हैं। तो पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार नाना प्रकार के ऋषि मुनियों के बीच में बहस चल रही थी कि श्रेष्ठ कौन है। भृगु मुनि को नियुक्त किया गया इस बात की जानकारी लेने। भृगु मुनि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के प्रति उन्होंने उपेक्षापूर्ण व्यवहार की। ब्रह्मा जी की आंखों में क्रोध की भावना झलक गई। भृगुमुनि इसको देख लिए और समझ गए कि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता वो पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हो सकते। आगे शिवजी के पास गए, शिवजी को नाना प्रकार से उन्होंने अपशब्द कह दिए और शिवजी इसको सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से उनका वध करने चले। पार्वती जी ने यह न कहने प्रकार ने उनको रोक लिया, लेकिन इसको देखकर भृगुमुनि समझ गए कि ये भी भगवान नहीं है। तत्पश्चात वो वैकुंठ में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ में जाने के पश्चात भगवान श्री विष्णु का दर्शन करते हैं। शेषनाग पर स्थित भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के द्वारा नाना प्रकार से सेवा प्राप्त कर रहे थे। भगवान श्री विष्णु के सुंदर सुरम्य रूप को देखकर कोई भी इस जगत का व्यक्ति मोहित हो जाए, लेकिन क्योंकि उद्देश्य के साथ भृगुमुनि वहां गए थे, तात्कालिक ढंग से जाकर उन्होंने पाद प्रहार उनके वक्षस्थल पर कर दिया। जैसे ही भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर भृगुमुनि जैसे महान संत का पाद प्रहार हुआ, पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्यशाली ज्ञानघन भगवान अपमानित नहीं हुए, अपितु उठ के गए और भृगुमुनि के चरणों को अपने हाथ में लेकर उनकी मालिश करने लगे। कहने लगे, हो सकता है पाद प्रहार के कारण आपका कोमल चरण कमलों में चोट आ गई हो, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है और क्षमा करना कि आपके प्रति मैंने इस तरह अपराध किया। भगवान श्री विष्णु के इस मृदु व्यवहार को देखकर भृगुमुनि आकर्षित हो गए, पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, यही पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन यह संपूर्ण वृत्तांत लक्ष्मी जी की आंखों सामने हुआ था, क्योंकि लक्ष्मी जी के दृष्टिपथ में यह संपूर्ण व्यवहार किया था। भृगु मुनि के दुर्व्यवहार से लक्ष्मी जी बहुत कुपित हुई और लक्ष्मी जी ने विचार किया कि हम इस अपमान का प्रायश्चित करेंगे। भृगुमुनि को शापित कर दिया कि ब्राह्मण भविष्य में धन से विहीन रहेंगे। और तत्पश्चात लक्ष्मी जी यहाँ महाराष्ट्र में ही कोल्हापुर में जो महालक्ष्मी का मंदिर है उसी स्थान में आकर भीषण तपस्याएं करने लगी, क्योंकि उनके आंखों के समक्ष उनके दृष्टिपथ में ऐसा अपराध हुआ था उनके स्वामी के प्रति। भगवान श्री विष्णु वैकुंठ में लक्ष्मी जी का अभाव अनुभव करने लगे। उनको ढूंढते ढूंढते ये वो वेंकटाद्री पर्वत पर आ गए और वहाँ पर एक चींटी की गुफा में बैठकर वो भी ध्यान करने लगे। कथा बड़ी लंबी है, लेकिन वर्णन आता है कि भगवान श्री विष्णु वहाँ वेंकटाद्री पर्वत में तपस्या करते रहे और लक्ष्मी जी, वही लक्ष्मी जी आकाश राजा और धरणी नाम के राजा और रानी के पुत्री के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम था पद्मावती। और तत्पश्चात बहुत सुंदर कथा आती है कि किस प्रकार पद्मावती और भगवान श्री नारायण या श्रीनिवास जी का विवाह संपन्न हुआ, जिसको प्रायः भारत में सुप्रसिद्ध श्रीनिवास कल्याण के रूप में लोग जानते हैं। अर्थात भगवान श्री विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम आराध्य देव हैं, लक्ष्मी जी उनकी विस्तारित रूप हैं। जितनी इस जगत की लक्ष्मी है भगवान श्री विष्णु की सेवा में ही लगनी चाहिए। जो कुछ भी संपत्ति भगवान ने हमें दी है, दत्तक के रूप में हम उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन समझना चाहिए भगवान सौभाग्यवती लक्ष्मी के पति हैं। भगवान गीता में कहते हैं, मया दक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। संपूर्ण प्रकृति का मैं नियंत्रण करता हूं, तो भले जीव नाना प्रकार से प्रयास करे कि मैं भोग करूं, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यश नैश्वरस्य शुभम दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च। जब जीव नाना प्रकार के अपने भोग के प्रयास से थक जाता है, उसके सारे भोग के प्रयास जब विफल होते हैं और वो विचार करता है कि अब मुझे इन भोगों के प्रयास को परित्याग करना है, दृष्ट दोषा च नित्यश, जब हम अपने भोग विलास की इस भावना को दोष दृष्टि से देखते हैं कि वास्तव में एक दोषपूर्ण व्यवहार है, न ईश्वरस्य अशुभम दत्ते स्वे महिम्नि स्थितस्य च, तब जीव वास्तव में अपने स्वाभाविक आध्यात्मिक परिस्थिति को प्राप्त करता है, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति को वो वास्तव में अनुभव करने लगता है। इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, ग्रेट सोल्स वांट कृष्णास कंफर्ट नॉट पर्सनल। तो जिस प्रकार लक्ष्मी देवी भगवान श्री विष्णु श्री नारायण की सेवा में लगती हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, श्री रूपिणी क्वनयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरि सद्मनि मुक्त दोषा संलक्षते स्फटिक कुड्य उपेत्य हेमनि सम्मार्जतीव अनुग्रहणेन यत्न। वैकुंठ का वर्णन आता है, कोटि कोटि लक्ष्मियां वहां पर अपने हाथ में झाड़ू लेकर वैकुंठ के फर्श को स्वच्छ करने का प्रयास कर रही हैं। लक्ष्मियां ऐसे प्रक्षालन कार्य में लगी हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में प्रश्न करते हैं कि वैकुंठ में जब धूल का कण नहीं तो इन लक्ष्मियों का यह प्रक्षालन कार्य किस तरह सार्थक है। श्री रूपिणी क्वनयति चरणारविंदम लीलांबुजेन हरिसद्मनि मुक्त दोषा। श्री अर्थात लक्ष्मी केवल भगवान श्री विष्णु श्री नारायण के दृष्टि और कृपा कटाक्ष की अभिलाषिनी है, इसलिए वो प्रयास करती हैं कि भगवान श्री विष्णु हमारी ओर देखे, और इस प्रयास से वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर प्रक्षालन कर रही हैं, भगवान के चित्त को आकर्षित करने, भगवान के ध्यान को आकर्षित करने। तो एक शब्द का इसमें प्रयोग हुआ है, लीलांबुजेन हरि सद्मनि मुक्त दोषा। लीलांबुजेन अर्थात लक्ष्मी देवी अपने हाथ में सुंदर कमल पुष्प लेकर उसको घुमाती रहती हैं। लीलांबुजेन क्यों? भगवान श्री विष्णु के चित्त को आकर्षित करने। और हरि सद्मनि अर्थात हरि के घर में, हरि के दरबार में, अर्थात भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में, वैकुंठ में। मुक्त दोषा अर्थात लक्ष्मी देवी का दोष है कि कोई एक स्थान पर दीर्घ काल तक नहीं रुकती। एक ही स्थान है जहां पर लक्ष्मी दीर्घ काल तक रुकती हैं, जहां भगवान श्री विष्णु की सेवा हो, जहां भक्त तन मन धन के साथ भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा में पूरी तरह लग जाए, जो भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन में सर्वोपरि स्वीकार करे, तब लक्ष्मी देवी अपने अन्य दोषों को त्याग कर, अपनी चंचलता के दोष को त्याग कर ऐसे भक्त के निकट निरंतर रहती हैं। यह है तात्पर्य मुक्त दोषा, अर्थात लक्ष्मी देवी के चंचलता का दोष तभी दूर हो सकता है जब लक्ष्मी को भगवान श्री नारायण की सेवा में लगाओ। इसीलिए जब भृगु मुनि का यह हादसा हुआ तो लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से विच्छेद हो गए इस लीला के अंतर्गत, लेकिन फिर देखा गया कि कैसे लक्ष्मी और नारायण को दोनों साथ लाया गया। और हमें भी अपने जीवन में यही करना है, किस तरह हम अपने जीवन को इस तरह ढालें, अपने सामाजिक पारिवारिक आर्थिक जीवन को इस तरह के रूपरेखा के ढांचे में ढालें कि हम भगवान की सेवा में अपना सब कुछ लगा सकें। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस जगत के बड़े बड़े देवतागण भी लक्ष्मी देवी के कृपा कटाक्ष के अभिलाषी हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी, सौभाग्यवती लक्ष्मी, अपना सौभाग्य का उदय तब मानती है जब उसे भगवान श्री नारायण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त हो। गॉडेस ऑफ फॉर्चून कंसिडर्स हर फॉर्चून टू बी कृष्णा सर्विस, अर्थात जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग गए प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन संस्था के नाना प्रकार के गतिविधियों में जुड़ गए, विचार करना चाहिए कि हम लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि महान भक्तों का लक्षण है कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अभिलाषी होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के संतोष और आराम के अभिलाषी होते हैं। इसलिए माधवेंद्रपुरी जी जब देखे कि गोपाल जी की सेवा सम्यक ढंग से हो रही है, राज सेवा होए पुरीर आनंद बाढ़िला, उस सेवा को देखकर वो पूरी तरह संतुष्ट हो गए और समझ गए कि हां अब गोपाल जी की सेवा ठीक ठाक चलती रहेगी। एक बार वर्णन आता है प्रभुपाद जी के पास एक सज्जन आए और कहने लगे प्रभुपाद को कि स्वामी जी क्या आप हाथ देखते हो क्या? प्रभुपाद ने कहा हाँ हाँ देखता हूँ, लेके आओ अपना हाथ। और अपने हाथ में प्रभुपाद ने उस सज्जन का हाथ ले लिया और प्रभुपाद अलग अलग एंगल से उनका हाथ देखने लगे और लगभग 5 मिनट तक प्रभुपाद देख रहे थे, यूं देख रहे थे, यूं देख रहे थे, यूं। और प्रभुपाद कहने लगे ओ हो 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 ओ हो 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 हो। और वो व्यक्ति बेचारा परेशान हो रहा था और कुछ समय के पश्चात उससे रहा नहीं गया तो पूछने लगा प्रभुपाद को क्या हुआ स्वामी जी, क्या देख रहे हो आप? प्रभुपाद ने कहा बहुत गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये आपके जीवन में निश्चित है। तो बोले अच्छा, तो इससे बचने का क्या उपाय है? प्रभुपाद ने कहा एक ही उपाय है, चैंट हरे कृष्णा। तो एक हमारे भक्त हैं, वो इस्कॉन में आने के पहले एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी। तो अब भक्त बन गए, लेकिन भक्त बनने के बाद भी अब उनका वो व्यवसाय है तो क्या करें, वही कर रहे हैं। लेकिन अब उनका टेक्निक कुछ बदल गया, लोग आते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो ये देखकर सबसे पहले कहते हैं कि देखिए समस्या तो बहुत है लेकिन आपको मैं बहुत सीक्रेट मंत्र लिख के दूंगा, वो जप करना है आपको। और हरे कृष्ण महामंत्र एनवलप में लिख के उसको लिफाफा बंद करके देते हैं और बोलते किसी को दिखाना मत, ये बड़ा सीक्रेट मंत्र है और इसका $500 है। तो मंत्र भी देते हैं, फीस भी लेते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं कि उनका एक क्लाइंट दूसरे से न मिले, तो पर्दाफाश हो जाएगा कि वास्तव में सबको एक ही मंत्र दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, किचन में वो कुकिंग कर रहे थे तो प्रभुपाद जी के एक ब्रजवासी मित्र भगत जी आए और प्रभुपाद जी को कहने लगे कि आप कुकिंग कर रहे हो? प्रभुपाद ने कहा मेरे शिष्य लोग बहुत धीरे धीरे कुकिंग करते हैं, मैं तो एक घंटे में 500 लोगों का कुकिंग कर दूंगा। भगत जी बोले नहीं नहीं ये संभव नहीं है। प्रभुपाद ने कहा हो शर्त लगी बताओ, 1,00,000 रुपये की शर्त, चलो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद बोले एक घंटे में 500 लोगों का कुकिंग कर दो, शर्त लगाओ चलो 500 रुपये का। भगत जी बोले प्रभुपाद आपके साथ शर्त लगा के लाभ नहीं, अगर आप जीते तो पैसा आप रखोगे, मैं जीता तो आप बोलोगे डोनेशन में दे दो। तो आप तो सब कुछ प्रभुपाद कृष्ण की सेवा में ही लगाते हो। तो प्रभुपाद जी पूरे विश्व भर में गए, मंदिर सब जगह स्थापना की और जितने लोग थे सभी को कृष्ण की सेवा में उन्होंने सम्मिलित कर दिया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर पूना शहर में श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। और इसका विस्तारित रूप श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर के रूप में प्रकट कर रहे हैं और यहाँ के सभी नागरिकों को स्वर्णिम अवसर प्रदान कर रहे हैं कि कैसे भगवान की सेवा पूजा में वो सभी लग जाएं। एक बार हम लोग किताब वितरण कर रहे थे लोकल ट्रेन पर और एक व्यक्ति आकर कहता है, कुछ दो चार हम लोग ब्रह्मचारी थे, और जोर से चिल्लाता है, अरे तुम लोग क्या प्रचार करते रहते हो भगवद गीता ये वो, बता आप लोग में से कितने विवेकानंद पैदा किए हो आप। हमने कहा हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम पैदा नहीं करते। हमने कहा देखो भाई, भगवान का कार्य है, प्रचार कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना तो प्रयास चल रहा है। तो इसलिए कुछ लोग जो भगवान की सेवा में लगते हैं, ये ना विचार कीजिए कि जन सामान्य इसको आसानी से स्वीकृति प्रदान करेगा। तो इसलिए यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी भगवान की स्थापना कर दिए, लेकिन भगवान की स्थापना जो है ये सेवा का आरंभ है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दो बार समर्पण किया। अर्जुन का पहला आत्मसमर्पण हुआ क्लेश में, क्लेश के अंतर्गत जब आत्मसमर्पण किया उसका परिणाम था ज्ञान। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया उसका परिणाम था सेवा, युद्ध करने की सेवा। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद सेवा आरंभ होती है। तो अब वर्णन आता है माधवेंद्रपुरी के विषय में कि रात्रि को भगवान श्री गोपाल जी स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने माधवेंद्रपुरी जी को कहा कि अब ग्रीष्म ऋतु आ रही है और मेरा निवेदन है कि आप जाइए और मलय से कुछ चंदन ले आइए। महान संतों का लक्षण होता है कि भगवान और उनके प्रतिनिधियों का आदेश सुनकर ये प्रश्न नहीं करते कि क्यों, वो केवल ये प्रश्न करते हैं कि कैसे। हम लोगों की समस्या है कि हम लोगों का पहला प्रश्न होता है क्यों, आप कृपा करके सेवा कीजिए। अरे मैं क्यों, भक्तों का समुदाय बहुत बड़ा है, डेटाबेस दिखा देता हूं, और कोई मिलता है तो उनको पकड़ो, हम तो अधम हैं, बहुत नीच हैं, और अच्छे अच्छे लोग हैं उनको लगाइए। माधवेंद्रपुरी जी इतने उच्च कोटि के संत थे, उन्होंने अपने शिष्यों को नहीं भेजा, भगवान गोपाल ने उनको आदेश दिया, वो तत्क्षण जाने के लिए तैयार हो गए। महान भक्त का ये लक्षण होता है कि भगवान की सेवा के लिए निरंतर वो लोलुप होते हैं और उस सेवा के अंतर्गत चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो उसके विषय में चिंतन नहीं करते। अयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, अयाचित खाइले खाना नहे उपवास। तो माधवेंद्रपुरी जी भ्रमण करते करते क्षीर चोर गोपीनाथ के मंदिर में आते हैं। तो उस समय वो गोपीनाथ जी का मंदिर रेमुना में था और वहां आके देखते हैं कि भगवान श्री गोपीनाथ के समक्ष नाना प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन भोग लगाया जा रहा है और विशेष रूप से एक प्रकार का क्षीर। उस खीर को देखकर उनका चित्त आकर्षित हुआ, मन में संकल्पना करने लगे कि किस प्रकार उस वस्तु को मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, अगर मुझे पता पड़े कि इसका स्वाद कैसे है तो मैं गोपाल को यह भोग लगाऊंगा और हमारे गोपाल इससे प्रसन्न होंगे। बद्ध जीव और शुद्ध भक्त में यही दृष्टिकोण का अंतर होता है। बद्ध जीव इस जगत के किसी भी वस्तु को देखकर यह मूल्यांकन करता है कि कैसे यह वस्तु मैं अपने भोग में लगाऊं। शुद्ध भक्त किसी वस्तु को देखकर विचार करता है कि कैसे मैं इस वस्तु या व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाऊं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए यहां पर माधवेंद्रपुरी के विषय में एक परिचय दिया जा रहा है कि जो खीर को देखकर उनके मन में इच्छा जागृत हुई उसको सामान्य नहीं मानना चाहिए, यह कोई खीर को देखकर उसका भक्षण करने की इच्छा से उनके मन में यह इच्छा जागृत नहीं हुई। अयाचित वृत्ति पूरी विरक्त उदास, उनके विषय में कह रहे हैं कि माधवेंद्र पुरी जी विरक्त थे, उदासीन थे और यहां वहां दर दर भटकते हुए भिक्षा नहीं मांगते थे। जो भगवान प्रदत्त प्राप्त हो जाए, सौभाग्यवश जो उनको प्राप्त हो जाए वो उसे स्वीकार कर लेते थे। अयाचित वृत्ति बिना याचना के येन केन प्रकारेण जो भगवान प्रदान कर ले उसे वो स्वीकार कर लेते थे। अयाचित खाई ले खाना नहे उपवास। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं माधवेंद्र पुरी वॉज डिटैच्ड फ्रॉम ईटिंग एंड स्लीपिंग, अर्थात वो पूरी तरह विरक्त थे भोजन और निद्रा से। तो भक्ति में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे नाना प्रकार के शारीरिक गतिविधियों से वो विरक्त होता चला जाता है। इसलिए यहां वर्णन आ रहा है कि जो व्यक्ति भोग की इच्छा से मुक्त हो धीरे धीरे इंद्र तृप्ति की भावना उसकी कम हो जाती है। एक बार एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से प्रश्न किया, भगवान ने इस जगत का निर्माण क्यों किया? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, भोग के लिए। और वो रिपोर्टर खुश हो गया, मुस्कुराने लगा। प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारे नहीं कृष्ण के, अर्थात सब कुछ भगवान के संतोष के लिए है, सामान्य बात नहीं। तो हम लोग प्रभुपाद जी की दया से यहां पर जो कुछ भी करते हैं, प्रभुपाद जी ने इस तरह व्यवस्था की कि कनिष्ठ अवस्था में हम लोगों का शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है, इसलिए ठीक प्रकार से सोकर ठीक प्रकार से भोजन करके भक्ति करते रहो। लेकिन जब हम माधवेंद्रपुरी के विषय में सुनते हैं पढ़ते हैं तो समझते हैं कि आदर्श स्तर पर भक्त की वास्तव में क्या पराकाष्ठा होती है और वो क्या ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम भले यहां हो लेकिन समझ जाएं कि हमको वहां जाना है। तो माधवेंद्रपुरी को यहां विरक्त और उदास बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इतने कृपालु हैं कि इस्कॉन संस्था को इस तरह बनाए कि हर कार्यक्रम के बाद प्रसाद है और प्रसाद के कारण ही कई लोग भक्ति में भी आए हैं और प्रसाद का सेवन करके धीरे धीरे चित्त शुद्ध हुआ और तब जाकर हम लोग इस भक्ति के कार्य से जुड़ पाए। यहां पर जेजे के कई लड़के बैठे हैं, मैं जब वहां प्रोग्राम के लिए जाता था आरंभ के दिनों में, जितने लड़के आते थे कोई मेरा लेक्चर के लिए नहीं आते थे, क्योंकि प्रसाद मेरे साथ जाता था वो आते थे और लेक्चर के बीच बीच में मुड़ मुड़ के देखते थे कि प्रसाद का डब्बा तो है ना, और उसको देखकर आश्वस्त हो जाते कि चलो भविष्य उज्जवल है, और तब जाके वो बैठ पाते थे। एक दिन किचन वाले प्रसाद रेडी नहीं किए, मैं पहुंच गया बिना प्रसाद के, तो सब लोग मेरे आगे पीछे सब देख रहे हैं कहां गया, और एक लड़के सराहने गया मुझे, पूछता है आप आज अकेले आए हो क्या? मैंने कहा चिंता मत करो प्रसाद आ रहा है। तो बोले हाँ फिर आइए, मानो उसके बिना अंदर प्रवेश निषेध था। जब मैं नौकरी करता था उस समय, वैसे हम केवल 3 महीने ही नौकरी किए, हमारा कई बार इंट्रोडक्शन करते हैं अलग अलग शहर में, लोग कहते 3 साल नौकरी किए, 4 साल नौकरी किए, कई साल नौकरी किए, राधेश्याम प्रभु और मैं साथ में रहते थे, और उस समय 15 दिन के लिए मुझे अहमदनगर भेज दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि गैस स्टोव और बाकी चपाती का जो बेलन और लाटनी और ये जो भी आइटम था सब पैक करके लेके गया। तो उस समय हमारे सुदामा प्रभु देख के घबरा गए, बोले किधर जा रहे हो, होटल चलाने जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, हम प्रसाद ही पाएंगे जहाँ भी जाएंगे। तो मैंने कहा वाह, प्रसाद के प्रति आपकी भक्ति तो मानना पड़ेगा। तो मैं वहाँ जाकर अलग अलग होटल में पूछताछ करने लगा, जो जितने बड़े बड़े होटल थे सब में मेरा एक ही प्रश्न था कि मुझे कमरे में कुकिंग करना है। तो बोले पागल हो क्या, कमरे में कोई कुकिंग करता है क्या? हमारा रेस्टोरेंट है बढ़िया, ये है वो है। बोले हमने कहा नहीं, हमको कुकिंग करना है। तो पूरा शहर खोजकर परेशान हो गया, कोई अलाउ नहीं किया। लास्ट में एक बिल्कुल थर्ड क्लास होटल मिला, 10 रुपये पर डे का चार्ज था। वो देख के आप समझ जाओगे कि कैसा था। दरवाजे को हाथ लगाओ तो गिर जाता था, और खिड़की की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, एयर अनकंडीशन चलता था। तो मैंने जाकर वहां मैनेजर को कहा कि मुझे यहां पर रहना है। वो कहता जितना समय रहना है रह जाओ। मैंने कहा लेकिन मुझे कुकिंग करना है कमरे में। बोला जो करना है करो, और क्या बर्बाद करोगे इसको, चाहे अंदर बम भी फोड़ दो कुछ नहीं होगा। तो फिर मेरा मैनेजर आके मेरे को पूछता है कहाँ रहता है। मैंने बताया कि फलाना फलाना होटल है, वहाँ रहता हूँ। वो नाम सुन के घबरा गया, बोले पागल हो क्या, अपमान कर रहे हो हमारे कंपनी का, ऐसे जगह क्यों रहते हो। हमने कहा प्रसाद, प्रसाद वहाँ बनाना है इसलिए। तो बोला क्या बात कर रहे हो, पागल हो गए, प्रसाद के पीछे पागल हो। एक दो दिन इस तरह कहा, तीसरे दिन वो मेरे को पूछता है थोड़ा प्रसाद मेरे लिए भी लाना। तो प्रभुपाद जी जानते थे कि हम लोग सीधे उस विरक्त स्तर पर नहीं है, और हरे कृष्णा में आने के पहले प्रसाद की हमारी भावना थी कि दो चार शक्कर की गोली, प्रसाद मतलब थोड़ा लो और निकलो। इस्कॉन में आने के बाद पहले मालूम पड़ा कि पूरा लंच प्लेट को भी प्रसाद बोलते हैं, और इसके कारण कितने चित्तवृत्ति में शुद्धिकरण होता है। पुणे यात्रा में याद है हम लोग एक बार प्रसाद बना रहे थे, दो साल पहले, पिछले के पिछले वर्ष, इस वर्ष के पहले वाले वर्ष, तुम्हारे राधा वल्लभ प्रभु बहुत अलग अलग मेनू विचार करते, तो उन्होंने सोचा भक्तों को संतुष्ट करने के लिए हम लोग पास्ता बनाएंगे, खिचड़ी बहुत हो गया। तो पास्ता के लिए कोलावीटा ऑलिव ऑयल लेके आए, तो 500 रुपये किलो, 500 रुपये लीटर का उसका भाव चलता है। तो वो डालने लगे, एक हमारा भक्त थे, गांव से थे, वो मदद कर रहे थे, तो तेल को डालने लगे और पूछे प्रभु जी ये सरसों का तेल है। हमने कहा नहीं नहीं अच्छा तिल का तेल है। हमने कहा नहीं, तो शेंगदाना का तेल है। नहीं, बोले कौन सा तेल है। बोला ये ऑलिव ऑयल है। बोला अच्छा अच्छा क्या रेट है। हमने कहा 500 रुपये किलो। फट से रुक दिया वो, बोले इतना महंगा नहीं डालना चाहिए, पचेगा नहीं। तो हमने कहा नहीं नहीं क्या करें, इटालियन में यही चलता है और कुछ नहीं कर सकते। तो जो भी हो हमने बनाया, बहुत कष्ट करके, बहुत पापड़ बेलकर बनाया, और बनाने के पश्चात जब सर्विंग करने लगे, लोग आके पूछ रहे थे, देखे बोले ये क्या है। हमने कहा पास्ता। पास्ता खाने का आइटम है। बोले अरे प्रभु ये इटली का बहुत अव्वल नंबर वन क्वालिटी का आइटम है। बोले खिचड़ी नहीं मिलेगा। बोले 10 रुपए का प्लेट छोड़कर 30 रुपए प्लेट का दे रहे हैं, क्या मांग रहे हो खिचड़ी। नहीं नहीं हमको तो खिचड़ी चाहिए। तो मैंने राधा वल्लभ प्रभु को उस समय बोला कि देखो भक्तों को जो है यहाँ पर खिचड़ी के प्रति कितना प्रेम है, तो हमारे बॉम्बे के भी जितने कॉलेजों में प्रोग्राम हुआ, खिचड़ी बांट बांट कर लोग जो है भक्त बने। तो कोई भी आइटम हो, सिंपल सा सिंपल, वो भगवान को भोग लग जाए, वो खिचड़ी भी क्यों ना हो, वो लोगों को इतना संतोष देता है कि उनके चित्त के अंदर जो मैल होता है तात्कालिक ढंग से पूरी तरह स्वच्छ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर माधवेंद्रपुरी के विषय में बता रहे हैं कि माधवेंद्रपुरी जी केवल भगवान श्री गोपाल के लिए ही प्रार्थना कर रहे थे, उनको अपने उदर भरण की कोई चिंता नहीं थी। तो आगे कहते हैं प्रेमामृते तृप्त क्षुधा तृष्णा नहीं बाधे क्षीर इच्छा हो लाता है माने अपराधे। प्रेमामृते तृप्त, तो माधवेंद्रपुरी के विषय में बता रहे हैं कि वो प्रेम के अमृत से पूरी तरह तृप्त थे, क्षुधा तृष्णा नहीं बाढ़े, भूख और प्यास उनको सता नहीं रही थी, और क्षीर इच्छा हुईला, लेकिन खीर पाने की इच्छा जो जागृत हुई उनके मन में, ताहे माने अपराधे, उन्होंने विचार किया ये मेरे मन में अपराध की भावना जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण के भोग लगने से पूर्व मैं उसका भोग करने का इच्छा किया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्षीर इच्छा होला ताहे माने अपराधे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं डिवोटी इज नॉट अफेक्टेड बाय हंगर एंड थर्स्ट। क्षुधा है, तृष्णा है, वो किसी प्रकार से भक्त पर लागू नहीं होती क्योंकि वो शारीरिक स्तर से उठ जाता है। तो हम देखते हैं कि कविराज गोस्वामी अपने वयोवृद्ध अवस्था में इस प्रकार सेवा में पूरी तरह लीन थे और वो वर्णन करते हैं कि कैसे वो भगवान की सेवा में लगे हैं केवल भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। ये बा नहि बुझे केह सुनिते सुनिते केह कि अद्भुत चैतन्य चरित्र कृष्णे उपजीबे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले बड़ होए हित। वो कहते हैं कि वयोवृद्ध अवस्था में भक्त समुदाय ने मुझे ये सेवा दी, सामान्य रूप से इस उम्र में इस आयु में कोई व्यक्ति कोई सकारात्मक कार्य संपन्न नहीं कर सकता, भगवान का आशीर्वाद हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। जो शरीर क्रियाशील होने की स्थिति में नहीं वो भी चमत्कारी कार्य कर सकता है। तो कहते हैं कोई कहेगा कि यह चैतन्य चरितामृत मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि में यह ज्ञान प्रवेश नहीं कर रहा, तो कहते चिंता मत करो। ये बाना ही बुझे के सुनिते सुनिते से बारंबार श्रवण करो कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। ये चैतन्य महाप्रभु की चरित्र कितना ही अद्भुत है। कृष्णे उपजीबे प्रीति जानिबे रसेर रीति, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति प्रीति जागृत होगी, रस तत्व का विशाल ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। सुनिले बड़ होए हित, ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से हमारा जीवन पूर्ण रूपेण मंगलमय हो जाएगा। केवल ध्यान पूर्वक हमें भक्तों के समुदाय में इसका श्रवण करना है। यदि हमें लगे बहुत थक गया, बहुत वृद्ध हो रहा हूं, शारीरिक व्याधियां हैं, समस्याएं हैं, कविराज गोस्वामी कहते हैं अरे मुझे देखो 95 वर्ष की आयु में हम इसको लिख रहे हैं, तो क्या आप अपनी भरी जवानी में बैठकर कथा नहीं सुन सकते, ध्यान नहीं लगा सकते? तो इसलिए यह सत्संग की बड़ी महिमा है कि जब अवसर प्राप्त हो भक्तों के समुदाय में आकर ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने मात्र से हमारी चित्त वृत्ति की नाना प्रकार की वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण इसलिए आवश्यक है। तो कई बार हम इस बात को देखते हैं कि शरीर को चलाना बहुत आसान होता है लेकिन बैठकर सुनने में कई बार नींद आ जाती है, निद्रा का आक्रमण हो जाता है। तो यह माधवेंद्रपुरी के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रेमामृते तृप्त क्षुधा तृष्णा, शारीरिक कोई भी बाधाएं उनके कार्य में अड़चन नहीं बन रही थी, न निद्रा की समस्या थी, न भूख की, न प्यास की, तो पूरी तरह विरक्त थे। कई बार मैं प्रवचन देता हूं तो एक बार मैं प्रवचन दे रहा था, सामने बैठकर एक व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू हुआ तो बस आंख बंद करके गिर गया और पूरा प्रवचन में केवल वो नीचे झूम रहा था, झुक रहा है उठ रहा है, झुक रहा है उठ रहा है। और वैसे ही लोगों का ध्यान नहीं लगता, चार पांच लोग पूरे प्रवचन में उसी को देख रहे थे, पूरा ध्यान लगाए के बैठे थे कि अब क्या करेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, पूरा ध्यान उसी पे चला गया। तो मैंने बीच में कुछ तो एक चुटकुला सुनाया, सब लोग हंसने लगे, वो भी अचानक आंख खोला हंसने लगा, सुना नहीं था, आंख खोला हंसा वापस हो गया। तो कुछ लोग महाप्रसादे गोविंदे पर ही आंख खोलते हैं। तो हम लोग के इस कनिष्ठ स्तर पर कथा के प्रति रुचि इतनी अधिक नहीं होती, कोई मनोरंजन का कार्यक्रम हो, कोई क्रिकेट का मैच हो, अगर बोले आईपीएल का मैच चल रहा है आकर देखिए, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, समय अपने आप निकल आता है। 2 घंटा जप करने लोगों को कहो, जप का टाइम नहीं मिलता, 6 घंटे का मैच देखने बोलो, बोले ये तो स्वाभाविक है, ये तो हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है, भारतीय होने के नाते हमारा धर्म है, तो इसलिए कथा के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए, कृष्ण कथा के प्रति। और जब कथा में रुचि आएगी तो धीरे धीरे नाना प्रकार के शारीरिक क्रियाओं से हम लोग विरक्त होते चले जाएंगे। एक भागवत कथा की हम बात बताते हैं। एक कथाकार थे, उनके कथा में एक सज्जन आते थे, और विशेषता ये थी कि वो सज्जन सामने आकर बैठकर बैठते ही साथ सो जाते थे, तो कथाकार को बड़ा क्रोध आता था। आता है रोज, लेकिन आते ही साथ सो जाता है। तो जब वो सज्जन प्रवेश करते थे तो कथाकार माइक पर जोर से चिल्लाते थे, आ गया क्या? तो आके वो जब बैठता था तो बोलते थे, बैठ गया क्या? और बैठने के बाद वो सो जाता था। सोने के बाद जब उठ के जाता था तो कथाकार उसको जाते हुए देखकर बोलते थे, जा रहा है क्या? तो वो सज्जन पूरी कथा में ये तीन शब्द ही सुनते थे, लेकिन कथा के इतने प्रेमी थे कि प्रतिदिन आते थे, नियमित रूप से आते थे, वहां आकर सोते थे। एक दिन वही सज्जन घर पर सो रहे थे, रात को सोते सोते सपना देखा, और सपने में देखा कि वो कथा में बैठे हैं, और सपने में देखा कि वो जाग रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और उसी समय जब वो सोकर सपना देख रहे थे, उनके घर पर एक चोर घुस आया, और चोर जैसे ही निकट आया, सपने में वो देख रहे थे कि कथाकार माइक पे बोल रहे हैं, आ गया क्या? चोर सुन के घबरा गया, खिड़की के पीछे बैठ गया, तो बोला, बैठ गया क्या? चोर उठकर घबरा के भागने लगा, बोला, जा रहा है क्या? चोर ने नोट किया, ये घर में कभी नहीं आना भाई, बाकी घरों के तुलना में यहाँ का सिक्योरिटी बड़ा तगड़ा है, निद्रस्त अवस्था में भी ये देखते रहते हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए, कथा में आओ और आकर सोने का भी बड़ा फल है, प्रोत्साहन नहीं दे रहे कि यहां आके सो जाओ। कई बार मैंने देखा है कथा में लोग आके सोते भी रहते तो एक मंद मंद मुस्कान रहती है। नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु, सारे अभद्र नष्ट हो जाते तो शांति से सोते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रतिदिन प्रभुपाद के ग्रंथों का श्रवण करें। कई बार मेरे प्रवचन के बाद लोग कहते हैं, ये सब प्रभुपाद के बुक्स में है क्या? ये लीला प्रभुपाद की बुक्स में थी? मैंने कहा, हाँ जी। तो बोला, अच्छा, मैंने कभी पढ़ी नहीं। एक बार मैं अमेरिका में किसी के घर पे गया, बोला, फोर्थ कैंटो निकालना। पूरा जो बक्सा खोल रहे थे मेरे सामने, चीर रहे थे, प्लास्टिक को निकाल रहे थे। मैंने कहा, ये आप आज पहली बार निकाल रहे हो? बोले, हाँ हाँ। बोले, कितने साल पहले लिया था? बोले, बेटा, वो तू कौन से क्लास में था जब ही हमको प्रभु जी आके दे के गए थे? और बेटा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और उसको पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा, आपने पहले खोला क्यों नहीं? बोले, आप ही की प्रतीक्षा हम लोग कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने इतना ग्रंथ लिखा है, इतने उसमें तात्पर्य लिखे हैं रात्रि की निद्रा भंग करके। तो थोड़ा समय निकालकर प्रतिदिन नियमित रूप से प्रभुपाद के ग्रंथों का पठन करना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि भगवान की सेवा क्या होती है और क्यों करनी चाहिए। तो इसलिए क्षीर इच्छा होइले ताहे माने अपराधे, क्षीर की इच्छा को देखकर उनको लगा कि हमने अपराध कर दिया, भगवान के चरणों में अपराध कर दिया। इस तरह माधवेंद्रपुरी जी विचार कर रहे थे। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जब नंद महाराज और वसुदेव जी का भेंट होता है तो वर्णन आता है कि वसुदेव जी नंद महाराज को सांत्वना देते हुए कहते हैं, नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्रकर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोत सो यथा। कहते हैं कि देखिए, आप और हम इतने निकट के प्रेमी हैं, ऐसा स्निग्ध संबंध है, लेकिन भगवान ने इस जगत को इस प्रकार निर्मित किया कि हम इच्छा अनुसार अपने प्रेमियों के साथ दीर्घ काल तक नहीं रह सकते। ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा, जिस प्रकार वेगवती सरिता के प्रवाह में नाना प्रकार के काष्ठ के टुकड़े कुछ समय तक साथ चलते हैं, तत्पश्चात उस प्रवाह से ही बुरी तरह आंदोलित होकर उनका विच्छेद हो जाता है, उसी प्रकार हो सकता है किसी के प्रति हमारी प्रीति हो और मन में इच्छा जागृत हो कि उनके साथ ही हमें संवास करना चाहिए, लेकिन भगवान की इच्छा अनुसार हम सभी को अपने अपने कार्य संपन्न करने हैं। तो उसी प्रकार यहां पर वर्णन आ रहा है, माधवेंद्रपुरी जी गोपाल जी की संस्थापना किए, उनके सारे प्रेमी शिष्यगण सब वहीं पर थे वृंदावन में, आनंद के साथ वो उस सेवा में लग सकते थे, लेकिन भगवान गोपाल ने उनको भेज दिया कि जाइए और मलय का चंदन ले आइए। तो सेवा में भी नाना प्रकार की अड़चने आएंगी, चुनौतियां आएंगी, और समझना चाहिए कि भगवान इन चुनौतियों को भेज रहे हैं। भौतिक आध्यात्मिक नाना प्रकार की चुनौती आएगी। यहां पर माधवेंद्रपुरी के मन में यह चुनौती आ गई कि मैंने ऐसा अपराध क्यों किया। तो जब मन में यह इच्छा, यह विचार जागृत होता है कि मैंने यह सेवा करते करते यह अपराध किया, तो भक्ति के भाव से हमारा मन स्खलित हो जाता है, हम विचलित हो जाते हैं, अपना तन मन धन सेवा में नहीं लगा पाते। माधवेंद्रपुरी जी केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए विचार किए थे, क्षीर इच्छा होइला, लेकिन ताहे माने अपराधे। वो इतने निर्मल शुद्ध पवित्रीकृत हृदय के थे, उनको लगा मैंने भगवान के भोग का भोग करने का प्रयास किया है, इसलिए मैंने अपराध किया। तो इसलिए हमारी सेवा में भी मन से मन के अंतर्गत नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, जिसके कारण हमारी सेवा में कुछ व्यवधान आ सकता है। लेकिन जब हम भगवान पर निर्भर करेंगे तो ये सारे व्यवधान नष्ट हो जाएंगे। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, ग्रामेर शून्य हाटे बसी करेन भोजन करेन कीर्तन ऐता पुजारी रहला ठाकुरे शयन। ग्रामेर शून्य हाटे, तो जाके गए और दूर एक ऐसा वीरान सुनसान स्थान था जहां कोई नहीं था, माधवेंद्रपुरी जी वहां जाकर बैठ गए। ग्रामेर शून्य हाटे, क्यों इतना वो लज्जित हो रहे थे, बोले भक्तों के निकट नहीं रहना चाहिए, मुझे मंदिर से दूर कोई स्थान में रहकर इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ग्रामेर शून्य हाटे बसे करेन कीर्तन, तो बैठ के नाम जपने लगे। तो प्रभुपाद जी यहां पे लिखते हैं कि परमहंस वैष्णव निरंतर भगवान के नाम कीर्तन में लगे रहते हैं। जब हम भगवान के नाम कीर्तन में लगेंगे, सेवा संबंधित नाना प्रकार के व्यवधान और अड़चने सब नष्ट हो जाएंगी। जैसे मुझे याद है, पिछले वर्ष मैं IIT खड़गपुर में जा रहा था और उस दिन बंगाल बंद था, तो भक्त लोगों ने हमको पिकअप करने के लिए एम्बुलेंस लाया था। भारत में हर समस्या का समाधान है। तो एम्बुलेंस में मुझे लेके गए और मेरे साथ अमेरिका के दो भक्त थे और वो पहली बार काफ़ी सालों बाद मायापुर जा रहे थे। तो भक्तों ने हमारा स्वागत किया, एम्बुलेंस में हम लोग बैठे, एम्बुलेंस चलने लगी, बीच बीच में नारेबाजी चल रही थी, लोग रोक रहे थे, लेकिन कहीं पर भी रोका नहीं, देखा कि प्लस साइन है, एम्बुलेंस है, आगे जाने दिया। एक स्थान पर हमको रोक दिया और जोर जोर से नारेबाजी होने लगी और फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा, हम देखना चाहते हैं कि आपका पीछे में कौन है। तो पीछे जाकर वो लोग पीछे से अंदर देखने लगे। तो हमारा अमेरिका के भक्त आए थे, जुगल किशोर प्रभु, उनका हार के साथ स्वागत हुआ था और प्रसाद लेने के बाद वो आराम से सो रहे थे, गले में हार थी, खर्राटे मार रहे थे, सो रहे थे। उन्होंने देख के कहा, एम्बुलेंस बोनाफाइड है, लेके जाओ। तो हमने सोचा कि देखिए अड़चने आएंगी, लेकिन प्रभुपाद की कृपा हुई तो इस्कॉन भी एम्बुलेंस की तरह है और निरंतर ऊपर सायरन बजता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आकस्मिक रूप से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, भगवान परीक्षा लेते हैं, तो इसलिए अब माधवेंद्रपुरी वहां बैठकर जप कर रहे थे और ऐथा पुजारी करेला ठाकुरे शयन। तो इस तरह कविराज गोस्वामी भी सब वृंदावन के वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके अपना आशीर्वाद दीजिए, बिना वैष्णवों के आशीर्वाद के कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। छोटा बड़ा भक्तगण वंदो सबार श्री चरण, सिरे धरी ताहार चरण। वर्णन करते हैं कि छोटा बड़ा भक्तगण, जितने छोटा या बड़ा भक्त हैं उन सभी के चरण कमलों को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। अर्थात कविराज गोस्वामी की विनम्रता है कि वो कहते हैं कि सब मुझसे संतुष्ट हो जाइए, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए, ये भक्त की चेतना है। तो इसलिए जो कविराज गोस्वामी हैं वो केवल वैष्णवों का अनुगमन करते हुए इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। पाया यार आज्ञाधन ब्रजेर वैष्णवगन वंदो तर मुख्य हरिदास, चैतन्य विलास सिंधु कल्लोलेर एक बिंदु ताहा कणा कोहे कृष्णदास। तो कहते हैं कि जितने वृंदावन के वैष्णवगण हैं वो सभी मुझे अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करें, मुख्य रूप से राधा गोविंद के महंत हरिदास जी, चैतन्य विलास सिंधु, जिससे चैतन्य महाप्रभु के सुंदर लीलाओं के महासागर में जितनी लहरें हैं उसमें से एक लहर कल्लोलेर एक बिंदु, उस एक लहर के एक बूंद का तहां कणा कोहे कृष्णदास, उसके एक बूंद का एक भाग का मैं यहां वर्णन कर रहा हूं। केवल वैष्णवों के आशीर्वाद से ये कार्य मैं संपन्न कर रहा हूं। इसलिए माधवेंद्रपुरी जी यहां पर कह रहे हैं कि मैंने वैष्णवों के प्रति अपराध किया, भगवान के प्रति अपराध किया, इसलिए मैं इसका प्रायश्चित करता हूं कि मेरे मन में इस तरह की भावना आ गई कि मैं उस भोग को स्वीकार करूं और वो जाकर ग्रामेर शून्य हाटे बसी कोरेन कीर्तन ऐथा पुजारी, वो पुजारी जाकर ठाकुरे शयन, उस समय ठाकुर जी को रात का शयन सेवा करने के लिए चले गए गोपीनाथ जी के पुजारी। तो नियमित रूप से नाम जप प्रभुपाद जी अनुमोदन करते हैं। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को कह रहे थे कि महाप्रभु उच्च स्वर में हरिनाम की बात करते हैं, वो व्यक्ति प्रभुपाद से विवाद कर रहा था, नहीं उच्च स्वर में कीर्तन नहीं होना चाहिए, मानसिक जप होना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे थे नहीं, महाप्रभु कहते हैं उच्च स्वर में कीर्तन। ऐचे नृत्य ऐचे हरि ध्वनि, जब महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में नृत्य करते हैं, प्रताप रुद्र महाराज उसको देखते हैं तो कहते हैं ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरिध्वनि, कहा नहीं देखी ऐछे कहा नहीं सुनी, न कभी हमने देखा है न कभी सुना है, बताइए भट्टाचार्य जी ये क्या है। भट्टाचार्य को है ए मधुर वचन चैतन्येर सृष्टि ए प्रेम संकीर्तन, कहते हैं कि वास्तव में ये मधुर वचन श्री चैतन्य महाप्रभु का गोलोक धाम से हम लोगों के लिए भेंट है, इसको प्रेम संकीर्तन कहा जाता है। चैतन्येर सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन, ये कोई सामान्य इस भौतिक जड़ जगत का कोई कार्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी उसको कह रहे थे, महाप्रभु कहते हैं उच्च स्वर में कीर्तन उच्च स्वर में कीर्तन, और वो सज्जन कह रहे नहीं नहीं मानसिक जप मानसिक जप। तो प्रभुपाद बोले ठीक है प्रसाद लेके आओ, और प्रभुपाद ने कहा इस सज्जन को मत देना, क्यों ये मानसिक रूप से खाएगा। तो भारत में प्रभुपाद को कई लोग मिलते थे जो बहस करते थे, तो प्रभुपाद जी ने प्रतिदिन उच्च स्वर में 16 माला जाप इसका नियम बनाया है। तो हमें भी चाहिए कि प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर हम लोग भगवान का नाम जपें, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जब नाम जप में अपराध होने लगता है तो धीरे धीरे नाम के प्रति रुचि कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जब कोई पानी का बिल न भरे तो वो लोग पानी का सप्लाई पूरा बंद नहीं करते, केवल बूंद बूंद में पानी का सप्लाई करते हैं। तो केवल एक बिल्कुल धीमी से लेश धारा चलती है पानी की, आप अपना टैप ऑन करो तो पानी का एक जो है स्ट्रीम, वेरी थिन स्ट्रीम ऐसा निकलेगा। तो आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि पानी का सप्लाई बंद किया, और ये भी नहीं कर सकते कि पानी आ रहा है, दोनों के बीच की बात है। तो भगवान के नाम के प्रति अपराध जब करते हैं तो भगवान भी स्वाद को खींच लेते हैं, और भगवान का जो नाम है उसमें जो स्वाद है वो असीमित है, लेकिन हमको केवल वो लेश धारा में स्वीकार होती है। तो इसलिए नाम अपराध से बचना है, और नियमित रूप से भक्तों के संग में कथा और कीर्तन में जब हम भाग लेंगे तो धीरे धीरे इस बात की जानकारी होगी कि किस तरह हमें भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ऐथा पुजारी करैला ठाकुरे शयन, और वो पुजारी ठाकुर जी को शयन करने लगे। तो वर्णन आता है कि रात्रि के समय शयन होने के पश्चात गोपीनाथ जी उस पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। स्वप्न में प्रकट होकर पुजारी को कहने लगे, मेरे प्रिय पुजारी, मैंने अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए एक मटका खीर चुराया है, उनकी इच्छा थी, कृपा करके आप जाइए, वो लेकर जाकर दे के आइए। पुजारी घबरा कर उठ गया, क्योंकि प्रतिरात्रि को इस तरह सपना नहीं आता था, और उठ के भागा भागा गया, स्नान करके अंदर प्रवेश किया, देखा भगवान ने वास्तव में खीर चुरा के रखा था। भगवान अपने भक्त के प्रति इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए चुराने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तब से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, क्षीर चोर गोपीनाथ। तो इसलिए आगे वर्णन आता है, क्षीरलह एयार नाम माधवपुरी, तो माला गे गोपीनाथ क्षीर कोयला चुरी। तो उच्च स्वर में चिल्लाते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, कौन है आप बताइए, खीर लीजिए कृपा करके, गोपीनाथ जी ने विशेष रूप से आपके लिए इस खीर को चुराया है। क्षीर लह ए यार नाम माधवपुरी, किसका नाम है माधवेंद्रपुरी, बताइए कौन है यहां पर। तो मलागे गोपीनाथ क्षीर कोइला चुरी। कितना विशेष सौभाग्य का उदय हुआ माधवेंद्रपुरी के जीवन में, भगवान व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षेप कर रहे हैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भक्त दिन रात अथक परिश्रम करता है, रात्रि की निद्रा भंग करके अरुणोदय की वेला में उठकर नाना प्रकार से जप तप करना, शास्त्र अध्ययन करना, प्रचार करना, हमारे भक्ति के प्रत्येक कार्य केवल इसलिए हैं कि कृष्ण को संतुष्ट करें, समसिद्धिर हरितोषणम। तो क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि भगवान विग्रह के रूप में स्वयं माधवेंद्रपुरी के लिए इस तरह खीर चुरा रहे हैं, कितना सौभाग्य है यहां पर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णास एक्टिविटीज आर एब्सोल्यूट एंड दे आर ऑल गुड। कृष्ण के सारी गतिविधियां, सारे कार्यकलाप शुद्ध हैं, निरपेक्ष हैं, और वो सब हमारी भलाई के लिए हैं। सामान्य रूप से यदि कोई चोरी करे तो नैतिक दृष्टि से उसका खंडन किया जाएगा और उसकी आलोचना होगी, अनैतिक कार्य माना जाएगा। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण चुरा रहे हैं भक्त के लिए, यह बड़ा श्लाघनीय प्रशंसनीय कार्य माना जा रहा है। अर्थात जब भगवान कृष्ण चुराते हैं वो महान कार्य हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति प्रभुपाद को प्रश्न कर रहे थे, आप कृष्ण का प्रचार कर रहे हो, हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार कर रहे हो, अरे पूरे विश्व में सभी लोग कृष्ण कॉन्शियस हो गए, सब लोग हरे कृष्ण आंदोलन में आ गए, तो दुनिया का क्या होगा? तो प्रभुपाद ने कहा चिंता मत करो, तुम जैसे कई मूर्ख होंगे जो कभी नहीं आएंगे, जो हमेशा नाना प्रकार से तर्क करते ही रहेंगे। एक बार मैं जेल का प्रोग्राम कर रहा था यहीं 10 साल पहले यरवड़ा जेल में, और यरवड़ा जेल में जो है उम्र कैद की सजा वाले लोग रहते हैं, तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उस समय शिव प्रताप सिंह यादव जो मुंबई में थे, तो उन्होंने मेरे लिए कार्यक्रम आयोजित करवाया था, तो उनके साथ मैं यहाँ पर आया था, और उस कार्यक्रम में लगभग 500 कैदी बैठे थे, और सब लोगों ने जो है अलग अलग उनका परिचय दे रहे थे, इसने इतना मर्डर किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया, परिचय सुनकर ही मैं घबरा रहा था। और जेल प्रोग्राम की एक अच्छी बात होती है कि विज्ञापन की आवश्यकता नहीं, क्राउड गारंटीड होता है। 500 लोग बैठे थे, बिल्कुल प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम के बाद प्रश्नोत्तर का समय आया, एक कैदी ने हाथ उठाया, बोला मुझे प्रश्न है, तो मैंने कहा पूछो, बोले यहाँ नहीं मैं स्टेज पे आके करूँगा। तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर को पूछा ये कौन है भाई, बोले 12 मर्डर किया है। मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूँ क्या? बोला चिंता मत करो, पुलिस प्रोटेक्शन है आपको, कुछ नहीं होगा, आने दो उसको। तो स्टेज पे आया और स्टेज पे आके कहता है कि आप अभी कीर्तन कर रहे थे हरे रामो 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 हरे हरे, लेकिन शास्त्र में तो राम दिया है, तो वास्तव में रामो है कि राम है? जितने कैदी थे जोर जोर से ताली बजाने लगे, बोले कि देखो हमारे बीच में पंडित है, मर्डर किया तो क्या हुआ, है तो पंडित। तो मैंने उत्तर दिया कि देखो कोई आपको आम खिलाएगा और खिलाते खिलाते बोलेगा ये आमो है, खाओगे कि नहीं? आम हो या आमो हो, है तो मीठा। तो उसी प्रकार भगवान का नाम येन पेन प्रकारेण जैसे भी लो, नाम में बड़ी शक्ति होती है। तो वहां पर जितने कैदी थे पूरी कीर्तन में लग गए थे, और उस समय मुझे याद एक सज्जन मुझे मिले थे जो कि 25 साल की सजा उनको हुई थी, 25 या 30 साल की। तो मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो कहने लगा यहाँ पर मुझे सेवा दी गई है कि ग्रंथों को अलग अलग बुक्स को ब्रेल लैंग्वेज में अनुवाद करो, ट्रांसलेट इनटू ब्रेल, ब्रेल अर्थात अंधे लोगों के लिए भाषा। तो उनको सेवा दी गई थी कि प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज उसको वो ब्रेल भाषा में अनुवाद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जेल में जब मैं आया तो मैं बड़ा दुखी था, लेकिन अब जब यहाँ आने के बाद भगवान की डायरेक्ट सेवा मिल गई गीता के अनुवाद करने की, तो मुझे लग रहा है कि यह बड़ा सौभाग्य की बात है। अर्थात भगवान हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से प्रकट होते हैं, जो लगेगा कि ये हादसा हुआ बड़ा दुर्भाग्यशाली, उसके पीछे भी वास्तव में भगवान का कोई संदेश होगा। माधवेंद्रपुरी जी बड़े क्लेश युक्त अवस्था में दुखी होकर बैठे थे, उनको लगा कि मुझसे सबसे बड़ा अपराध हो गया मेरे द्वारा, और इस अपराध के कारण मुझे दंडित होना चाहिए, लेकिन भगवान की भी क्या लीला है, भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको पुरस्कृत करना चाहते थे। तो इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है न तथा ही अगवान राजन पुयेत तप आदि भी तथा कृष्णार्पितस प्राण तत्पुरुष निषेवया। भागवत में वर्णन आता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी दूषित क्यों न हो, पापी क्यों न हो, केवल भगवान की भक्ति करने मात्र से वो धीरे धीरे नाना प्रकार के अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। यथा कृष्णार्पितस प्राण तत्पुरुष निषेवया। और भगवान के भक्त जब हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो भक्ति और प्रसन्नता का उदय अपने आप हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अमेरिका में मैं न्यू वृंदावन में सेमिनार कर रहा था, वहां पे कोलंबस ओहायो का एक स्टूडेंट छात्र मुझे मिला। मैंने पूछा तुम भक्ति में कैसे आए, बोलता मैं वॉलीबॉल का बड़ा एडिक्ट था, जब भी कॉलेज से समय मिलता वॉलीबॉल खेलता रहता। तो एक दिन वॉलीबॉल का हमारा मैच चल रहा था और हमारे आगे वाले टीम में एक खिलाड़ी थे जो बहुत चैंपियन की तरह खेल रहे थे, और जब भी वो बॉल को जोर से स्मैश करते वो जोर से चिल्लाते हरी बोल, तो मुझे पहले समझ में आए क्या बोल क्या रहा है। मुझे पहले लगा हरी बॉल, तो उसको लगा बॉल के ऊपर कुछ बोल रहा है, बॉल के ऊपर कुछ जादू टोना कर रहा है। तो मेरे मन में कुछ विस्मय जागृत हुआ, मैंने उसको पूछा ये बार बार घड़ी घड़ी क्या चिल्लाते हो। बोलो नहीं नहीं मैं आजकल हरे कृष्ण मंदिर में जाता हूँ और वहाँ पर वो लोग हरी बोल बोलते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो खेलते खेलते भगवान की शक्ति का संचार हो, हरी बोल बोलूँगा। तो ये भी चालू हो गया अपने खेल में, ये भी अपना हरी बोल बोलने लगा। और देखा कि हरी बोल बोलने से उसको बड़ा आनंद आ रहा था, तो उसने पूछा कि हरी बोल को छोड़कर और कुछ भी है क्या? तो बोला हाँ हरे कृष्ण भी है। तो पूरा महामंत्र उसको दे दिया। और धीरे धीरे वो वॉलीबॉल के मैच के बाद वो व्यक्ति के साथ मंदिर जाने लगा। बोला धीरे धीरे वॉलीबॉल छूट गया, हरी बोल और हरे कृष्ण रह गया। तो बोला देखो भगवान कहाँ, वॉलीबॉल के मैदान में भी प्रकट हो गए और मुझे पकड़ के खींच के ले आए, जहाँ मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कुछ होगा। कई साल पहले की बात है, जब मैं पुजारी सेवा करता था, एक सज्जन आए और उन्होंने कहा भगवान को ये चढ़ाना है, जैसे लोग माला कंठी माला ये सब चढ़ाते हैं। मैंने कहा क्या है भाई? तो बोलता है बॉक्सिंग ग्लव्स है। मैंने कहा पागल हो गए क्या? तो बोले हाँ मैं बहुत बड़ा बॉक्सर हूँ और मैं भगवान को अर्पित करना चाहता हूँ। बोले ये क्या हो गया अचानक? बोला मैं गीता कोर्स अटेंड किया और उसमें बताया कि जो कुछ भी लाओ भगवान को अर्पित करो। तो मैंने कहा ये बॉक्सिंग ग्लव्स हम अर्पित नहीं कर सकते। बोले नया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ये क्यों आप ऑफर करना चाहते हो? बोले बाद में जिसको भी चढ़ाऊंगा उसको भगवान का प्रसाद मिलेगा, ये मेरी इच्छा है। मैंने कहा भगवान बचाए ऐसे प्रसाद से। तो अलग अलग जो लोगों की धारणाएं हैं वो भगवान के साथ जब जुड़ जाती हैं तो धीरे धीरे जीवन शैली में परिवर्तन होने लगता है। तो हम ये नहीं कहते कि आप अपने गतिविधियों को छोड़ो, हम कहते हैं कि आपने जीवन में कृष्ण को जोड़ो। तो यहां पर कई जो है प्रतिष्ठाशाली सज्जन और महिलाएं आए हैं, उपस्थित हुए हैं, जो नाना प्रकार से इस मंदिर के निर्माण में कार्य कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो आर्थिक योगदान के साथ साथ आप प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर भगवान का नाम जप कीजिए और देखिए कि कैसे आपका जीवन पूरी तरह सुखमय और शांतिप्रद हो जाता है। इसलिए यहां पर भगवान की गतिविधियों को एब्सोल्यूट बताया, अर्थात निरपेक्ष। भगवान का नाम हर परिस्थिति में लिया जाता है, अच्छे बुरे परिस्थिति से वो परे है, इट इज एब्सोल्यूट। इसलिए कहते हैं तोमा लागे गोपीनाथ क्षीर कोयला चुरी। तो नैतिक दृष्टि से चोरी करना अनुचित है, लेकिन जब गोपीनाथ भगवान चुराते हैं उसकी स्तुति हो रही है। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर प्रसंग इसका उद्घाटन हुआ। इतना जोर से चिल्लाने पर भी सामने से कोई व्यक्ति प्रकट नहीं होते, हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो है चोरी का नाम सुन के घबरा जाए। तो पूरी तरह से आश्वस्त कराने के लिए पुजारी आगे कहते हैं क्षीर लैया सुखे तुम्हें करह भक्षणे तोमा सम भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। क्षीर लैया खीर लीजिए, सुखे तुम्हें करह भक्षणे और सुखपूर्वक आप इसका भक्षण कीजिए। और कहते हैं हे माधवेंद्रपुरी तोमा सम भाग्यवान नहीं त्रिभुवने, आपके जैसा भाग्यवान तीनों लोकों में कोई नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, भगवान के तथाकथित तस्करी के कार्य सौभाग्य का उदय कर देते हैं। लॉर्ड्स क्रिमिनल एक्टिविटीज मेक अ डिवोटी फॉर्चुनेट। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अग्नि की तरह हैं, जो उनके संपर्क में आए उसका परिणाम होगा। इसलिए भगवान जब हमारे जीवन में आए तो भद्र अभद्र इत्यादि भावनाओं से हम उठ जाते हैं और निरपेक्ष स्तर पर हम जीव के जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले आर दुख नाई। जीव कृष्णदास, मैं कृष्ण का दास हूं और ये विश्वास करके नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में नष्ट होते हैं। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि हमें प्रयास करना है जितना हो सके भगवान को अपने जीवन में जोड़ने। एक बार हम किताब वितरण कर रहे थे एक कैंपस में, तो एक सज्जन सामने आता है और कहता है मुझे रावण संहिता देखना है। तो मैंने कहा ये तो भगवद गीता है। बोले नहीं, रावण संहिता मिलेगी क्या? अरे हमने कहा भैया भारत में रहकर आप रावण संहिता क्यों पढ़ना चाहते हो, और ये किताब के बारे में आपको जानकारी कहां से मिली? नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना है इसके बारे में। तो नाना प्रकार की भ्रांत धारणाएं लोगों के मन में होती है, लेकिन प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में सब कुछ स्पष्ट बता दिए कि आपको यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों के संग में आइए, भक्तों के संग में बैठकर कथा श्रवण कीजिए और ग्रंथ को नियमित रूप से पढ़िए। नारद मुनि को जब भगवान के दर्शन हुए तब वर्णन आता है रूपम भगवतो यत्त, भगवान के सुंदर रूप का उन्होंने दर्शन किया और तब भगवान के सुंदर विग्रह का वर्णन आ रहा है मनः कांतम सुचापहम। कृष्ण का रूप मनः कांत है, लक्ष्मी कांत अर्थात लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के स्वामी, राधा कांत अर्थात राधा के स्वामी, राधा के पति या राधा के जो भोग करने के एकमात्र व्यक्ति हैं कृष्ण। तो कांत का अर्थ होता है स्वामी या पति। तो भागवत के श्लोक में बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग हो रहा है मनः कांतम शुचापहम, भगवान के रूप को मनः कांत बताया जा रहा है। मनः कांत अर्थात जो मन के स्वामी हो, मन के ऊपर भोग और नियंत्रण करने का एक ही व्यक्ति का अधिकार है वो है कृष्ण। और शुद्ध भक्त का मन पूरी तरह कृष्ण प्रेम से आप्लावित होता है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर के अंग प्रत्यंग उनके नाना प्रकार के अष्ट विकारों के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगोति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो। तो नारद मुनि के वर्णन में यही आ रहा है कि भगवान के शुद्ध प्रेमा भक्ति के परिणाम स्वरूप उनके शरीर के सारे अंग नाना प्रकार से फड़क रहे थे, तो वही सारे लक्षण माधवेंद्रपुरी के शरीर में उन्होंने देखा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहां पर तात्पर्य में कृष्णा इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय हिज डिवोटीज, कृष्ण भक्तों के द्वारा पूरी तरह पराजित किए जाते हैं, भक्तों के नियंत्रण में कृष्ण आ जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण ये इहार वश हो यथोचित। तो ये दास जो पुजारी थे वो माधवेंद्रपुरी का गौर से निरीक्षण किए और निरीक्षण करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ ये कृष्ण को पूरी तरह वश में किए हैं, ये स्वाभाविक है क्योंकि शरीर पे इस तरह के लक्षण वो प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसा प्रेम को देखकर भगवान कैसे वशीभूत नहीं होंगे। चक्रवर्ती पाद के विषय में वर्णन आता है कि उनको आदेश दिया गया कि वो विवाह करें। वो शुद्ध कृष्ण प्रेम में इतने निमग्न होते थे कि ये सब व्यावहारिक बातों से परे थे। तो जिस रात्रि को विवाह हुआ तो पत्नी के साथ वो थे और रात्रि में भाग गए। तो फिर गुरु ने पूछा क्यों भाग गए भाई, तो बोले आपने कहा शादी करो मैंने कर लिया, आपने ये नहीं कहा रहो। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं आपको रहना है और साथ में ही रहना है। तो गए और रहने लगे और दूसरी रात को वो भागवत निकाले और पूरा भागवत पढ़ने लगे। और जैसे जैसे भागवत पढ़ने लगे पत्नी भाग गई और चक्रवर्ती पाद के गुरु ने कहा कि आप तो लगता है कि ऐसे स्तर पर हो कि इस भौतिक जगत के शुद्ध बुद्ध से परे, इस भौतिक जगत का कोई भी कार्य आपको आकर्षित नहीं कर सकता। तो जो भगवान के उच्चतम स्तर पर शुद्ध भक्ति के प्रेम में लोग होते हैं वो इस सांसारिक कार्यों से उठकर होते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के अंदर भी वो वैसे लक्षण देख रहे थे, हर प्रकार के आध्यात्मिक दिव्य लक्षण वो प्रदर्शित कर रहे थे। एक बार एक पाश्चात्य देश के भक्त को एक दक्षिण भारत में ब्राह्मण मिला और वो कहने लगा आप लोग हरे कृष्ण वाले कृष्ण की क्यों पूजा करते हैं, कृष्ण तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हैं, जो गाय और ब्राह्मण से प्रेम रखते हैं उनके प्रति वो आशीर्वाद करते हैं, तो आप लोग तो न गायों के प्रति आपका प्रेम है पाश्चात्य देश में और न ब्राह्मण परिवार में है, तो बेटर है कि आप राम की सेवा करो क्योंकि रामचंद्र जी जो है वानरों के साथ घूमते हैं तो आपका थोड़ा ज़्यादा मैचिंग होगा। तो भक्त ने कहा देखिए हम लोग कृष्ण की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण और राम में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता नहीं। वो बोला अच्छा क्या अंतर है, बोले देखो रामचंद्र जी ने बंदरों को वानरों को भयंकर सेवा में लगाया कृष्ण ने वानरों को मुफ्त में मक्खन बांटा, तो कौन ज्यादा कृपालु हुए? कृष्ण। देखिए सूर्पणखा का वध, सूर्पणखा के नासिका और कान रामचंद्र जी के आदेशानुसार कट गए, लेकिन वही जब कुब्जा के रूप में प्रकट हुई, कृष्ण ने उनको अपना प्रियतम के रूप में स्वीकार कर लिया और शुद्ध कर दिया, तो कौन ज्यादा कृपालु हुए? कृष्ण। और तीसरी बात ये कि पूरे विश्वभर में हम लोगों का जो प्रचार चल रहा है वो कृष्ण भावना के आधार पर, क्योंकि कृष्ण कृपालु हैं, दयालु हैं। रामचंद्र जी ने सीता देवी को केवल कुछ समय तक रावण के दरबार में रहने के लिए अग्नि परीक्षा के अंतर्गत डाल दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 जो 108 रानियां थीं जो कि दूसरे राजा के अधीन थी उनके साथ विवाह किया। तो ज्यादा कृपालु कौन हुए? कृष्ण हुए। इसलिए हम कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए हम कृष्ण की सेवा करते हैं। तो वास्तव में कृष्ण बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, और प्रभुपाद जी ने कृष्ण के ऐसे विग्रह पूरे विश्वभर में स्थापन किए। और कई लोग प्रभुपाद जी को प्रश्न करते थे कि अरे कृष्ण की सेवा पूजा में सब ध्यान अच्छी तरह से रखना चाहिए, सब ब्राह्मण होने चाहिए, आप इस तरह कैसे ड्यूटी वर्शिप करवा रहे हो? प्रभुपाद ने कहा नहीं, जब भगवान के अर्च विग्रह के लोग सेवा करेंगे धीरे धीरे ये भी शुद्ध हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की बात है, न्यूजीलैंड में प्रभुपाद के एक शिष्य बहुत बड़े इंजीनियर थे, तो उन्होंने अलग प्रकार का एक ऑल्टर बनाया घूमता हुआ, रिवॉल्विंग ऑल्टर। जगह सीमित था तो उन्होंने गौर निताय आगे रखा और बैक टू बैक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रख दिया। प्रभुपाद आए दर्शन के लिए, गौर निताय के सामने दंडवत किया, उठे तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा थे। प्रभुपाद घबरा गए, बोले क्या चल रहा है, कौन सा विग्रह लगा है? तो भक्तों ने कहा दोनों रखा है। तो प्रभुपाद ने कहा ये आइडिया किसने दिया आपको? तो बोला हमको लगा कम से कम जगह में भगवान के जितने विग्रह आ जाए उतना अच्छा होगा, तो ये हमारे टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े जीनियस हैं, तो उन्होंने सब कुछ एक साथ कर दिया। प्रभुपाद ने कहा भाव अच्छा है लेकिन विग्रह का अर्थ ये नहीं कि कुछ भी करो, तो इसलिए थोड़े नियम आप पालन करो। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप विग्रह की सेवा करो। तो जब आप लोगों का यहाँ राधा वृंदावन चंद्र मंदिर स्थापित होगा तो अधिक से अधिक लोगों को इस विग्रह की सेवा का अवसर प्राप्त होगा, अधिक से अधिक लोगों को बालाजी के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा, भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। और भगवान कोई केवल जड़ मूर्ति नहीं, काष्ठ के या संगमरमर के पुतले नहीं, यहाँ पर अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुरा रहे हैं, अर्थात वो उनके मन की बात जानकर उनके मन की वेदना को नष्ट करने के लिए स्वयं इस तरह प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए आगे कहते हैं प्रतिष्ठार भयपुरी गेला पलैया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गड़ैया। अब परिस्थिति ऐसी आई कि चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया, समाचार फैल गया कि गोपीनाथ ने खीर चुराया माधवेंद्रपुरी के लिए। माधवेंद्रपुरी इतने प्रतिष्ठित प्रसिद्ध हो गए, सब लोग आ आकर उनको प्रणाम करते थे, सम्मानित करते थे। वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव भागते चले गए, प्रतिष्ठार भयपुरी गेला पलैया। वो भाग रहे थे प्रतिष्ठा के भय से। कहा जाता है प्रतिष्ठा नारी रही कुंवारी, क्यों? प्रतिष्ठा नारी उसके पीछे नाना प्रकार के असुर लोग लगे रहते हैं कि कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करें। तो जो असुर लोग प्रतिष्ठा नारी का पीछा करते हैं वो उनसे भागती है कि हम नहीं जाएंगे इनके पास, तो असुरों के साथ वो विवाह नहीं करती। और प्रतिष्ठा नारी भक्तों के पीछे भागती है कि हम भक्तों के साथ रहेंगे, और भक्त प्रतिष्ठा नारी को देख के भागते हैं, इसलिए न असुर के साथ उनका विवाह होता है, वो चाहती है भक्तों से विवाह करो, उनसे भी नहीं होता, प्रतिष्ठा नारी रही कुंवारी। इसलिए प्रतिष्ठार भये पूरी गेला पलाइया, भाग गए लेकिन कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संगे गड़ैया। लेकिन ये सामान्य प्रतिष्ठा नहीं थी, कृष्ण प्रेम से संबंधित प्रतिष्ठा। गड़ाइया शब्द का अर्थ होता है ग्लाइडिंग डाउन। अगर किसी गेंद को आप ऊपर आप फेंकें, कोई इस तरह का अगर सपाट एंगल पर कोई एक बोर्ड हो, तो गेंद ऊपर जाकर वापस आएगा, ऊपर फेंको वापस आएगा। तो भक्तगण प्रतिष्ठा को दूर फेंकना चाहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठा ऐसी गड़ाइया अर्थात स्लाइडिंग डाउन या ग्लाइडिंग डाउन वापस आ जाता है, भक्तों के पास वापस आ जाता है। कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, फेम चेजेस द डिवोटी, अर्थात भक्त जहां भी हो उनके पीछे प्रतिष्ठा भागती है। प्रभुपाद जी हांगकांग में एक बहुत बड़े होटल में, फाइव स्टार होटल में बैठे थे। एक रिपोर्टर प्रश्न कर रहा था उनको, हमने देखा कि आप बहुत बड़े रोल्स रॉयस कार में आए, आप साधु हो, विरक्ति का संदेश देते हो। प्रभुपाद ने कहा, विरक्ति का नहीं, भक्ति का। कहा, लेकिन जो भी हो, लेकिन रोल्स रॉयस में कैसे आए? प्रभुपाद ने कहा, अरे भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक धाम में होते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात के रथ पे चलते हैं। मेरे शिष्यगण केवल टीन रबर स्टील वुड का एक रोल्स रॉयस ला के दे दिए, मेरी कृपा है, उसको भी मैंने स्वीकार कर लिया। तो घबरा गया वो, तो सोचने लगा ये क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, आई से रोल्स रॉयस इज नॉट इनफ। तो अगले दिन हेडलाइंस आ गया, स्वामी सेज रोल्स रॉयस इज नॉट इनफ। तो वास्तव में प्रभुपाद ये वर्णन कर रहे थे कि इस जगत के जितने भी वस्तु हैं वो सब भगवान की सेवा में। तो इसलिए तिरुपति बालाजी का एक सुंदर वस्त्र जन्माष्टमी का है, जो कृष्णदेव राय ने बनवाया था, उसका कीमत आज की तारीख में है 8 करोड़, वन ड्रेस, क्योंकि पूरे हीरे से भरे हुए हैं, 8 करोड़ का। तो कोई विचार करेगा ये कैसे, तो भगवान और भगवान के भक्त यही इन सभी के पात्र बनते हैं, कि कैसे श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा हो सके, और जो उससे जुड़ जाता है वो प्रसिद्ध हो जाता है। तो इसलिए यहां प्रभुपाद जी कहते हैं, फेम चेजेस अ डिवोटी। कोई भक्त कृष्ण की सेवा करे, प्रसिद्धि उनके पीछे पीछे भागती है। पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। तो बहुत सुंदर शब्दों में कविराज गोस्वामी अर्थात चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से श्लोक आ रहा है। वो कहते हैं, पुरीर प्रेम पराकाष्ठा करह विचार, पुरी के प्रेम की पराकाष्ठा को विचार करो, अलौकिक प्रेम चित्ते लागे चमत्कार। तो आपका हृदय पूरी तरह चमत्कार से भर जाएगा कि क्या कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा इन्होंने प्रदर्शित की। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अब जैसे ये संपूर्ण लीला अंतिम कुछ श्लोकों में और पूरा घना होता चला जाता है कि वास्तव में ये लीला का तात्पर्य क्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एसेंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभुज मूड इज सर्विस विदाउट पर्सनल कंसिडरेशंस। भगवान के साथ बहुत लोग संबंध जोड़ते हैं, मंदिरों में बहुत लोग माथा टेकते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना बहुत लोग करते हैं, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को क्या योगदान दिया है? सर्विस विदाउट पर्सनल कंसिडरेशंस। रम्यक काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण वा कल्पिता, गोपियों के पद चिन्हों में जैसे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की, वैसे हमको कृष्ण की सेवा करनी है। भगवान की सेवा इसलिए नहीं कि हम उनसे कुछ प्राप्त करें, लेकिन भगवान किस तरह संतुष्ट हो, अपने निजी स्वार्थ की भावना का परित्याग कर सर्वथा निस्वार्थ भाव से सेवा, यह है चैतन्य महाप्रभु का मिशन। गोपियों की विशेषता क्या थी? अ डिकेड इन सर्विस एंड अ सेंचुरी इन सेपरेशन। केवल 10 साल कृष्ण के संग में थे और 100 साल कृष्ण के वियोग में थे, लेकिन काम और प्रेम में अंतर यह होता है कि जब हम व्यक्ति के संग में होते हैं तो तब काम वासना प्रबल होती है, और किसी के प्रति काम की भावना हो तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अर्थात जब वो व्यक्ति मन से ओझल, जो हमारे दृष्टि से ओझल हो जाता है तो मन से भी वो निकल जाता है, क्योंकि वास्तव में हम लोग भोग की आकांक्षा कर रहे हैं, और जब व्यक्ति नहीं है तो हमको लगता है भोग नहीं प्राप्त हो रहा, चलो भोग की दूसरी वस्तु खोजते हैं। तो वास्तव में हम जब लोगों के साथ इस जगत में संबंध स्थापित करते हैं तो भले मुख पर मंद मंद मुस्कान हो, मीठी मीठी बातें करें, लेकिन मन में भावना है कैसे मैं इस व्यक्ति का भोग करूं। और जब कुछ समय के पश्चात वो व्यक्ति भोग देना बंद करता है तो धीरे धीरे मन से भी वो निकल जाते हैं। लेकिन यहां पर महाप्रभु कह रहे हैं अपने रवैये को बदलना है, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को अपने भोग के साधन नहीं बनाना, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों को केवल अपने सेवा के पात्र बनाना है। हमारा सुख नहीं, उनका सुख, निस्वार्थ भाव के साथ सेवा। इसलिए कितना सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, एसेंस ऑफ महाप्रभुज मूड, सर्विस विदाउट पर्सनल कंसिडरेशंस। बड़ी सुंदर बात बताई है। तो हमारे मंदिर में एक भक्त पहले आते थे, तो बताते हैं जब वो मंदिर में आते थे तो संडे फीस्ट में जब लाइन में खड़े होते तो संडे फीस्ट खाने की इच्छा इतनी उनकी तीव्र होती थी कि कभी ऊपर सर उठाकर देखे नहीं कि सर्विंग कौन कर रहा है, पूरा ध्यान उनका प्लेट पे ही लगा रहता था, और प्लेट को देखते देखते एक एक आइटम लेते लेते चलते थे, और कभी अचानक कोई आइटम प्लेट पे न गिरे, थोड़ा हलवा गिर जाए, अपेक्षा के अनुसार बहुत कम हो, तब वो ऊपर देखते थे कौन है जो हलवा नहीं दे रहा। तो वैसे ही हमारी भावना होती है कि जब तक भगवान अपेक्षा अनुसार हमारे जीवन के प्लेट में बहुत कुछ डालते रहते हैं, जब तक भक्त लोग हमें प्रेम देते रहते हैं, मीठे मीठे शब्द बोलते रहते हैं, हमको लगता है ये हमारे मित्र हैं, लेकिन जब हम किसी भक्त के साथ और भगवान के साथ संबंध स्थापित करें, उसका प्रमुख उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे उनका शोषण करूं, कैसे मैं अपने अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनको साधन बनाऊं। नहीं, माधवेंद्रपुरी की लीला के माध्यम से भगवान इस सिद्धांत को ध्वनित कर रहे हैं कि हमें मन में विचार लाना है कि कैसे मैं अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग कर केवल भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानूं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और इस बात को यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं। और अब आगे बड़ा ही सुंदर श्लोक, जो कि मैं विचार करता हूँ कि संपूर्ण जो कथा का सार श्लोक है, सार तत्व है, वो आगे महाप्रभु कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादीर न करे विचार। प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार, जो प्रगाढ़ प्रेम है इसका यह स्वभाव है क्या, निज दुख विघ्नादीर न करे विचार, कि भक्त कभी अपने दुख के विषय में चिंतन नहीं करता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब हम सेवा करें तो चार बातें होती हैं, स्केर्सिटी, इंपेडिमेंट्स, डिस्ट्रेस और डिसकंफर्ट एंड अनहैप्पीनेस। स्केर्सिटी, इंपेडिमेंट, डिसकंफर्ट एंड अनहैप्पीनेस, अर्थात कुछ अभाव हो, कोई अड़चन आए, कुछ दुख आए, नाना प्रकार के व्यवधान आए, ये चारों बातें हमारी सेवा में आती हैं। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, तोमर सेवाएं दुख होए यत सही तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। तुम्हार सेवाएं दुख हो यत, हे भगवान आपकी सेवा में जो नाना प्रकार के मुझे दुख होते हैं, सही तो परम सुख, वो वास्तव में सुख का कारण बनता है। सेवा सुख दुख परम संपद नाशय अविद्या दुख। तो सेवा में जो सुख और दुख आए वो वास्तव में हमारे अविद्या का नाश करता है, क्योंकि आप भक्ति करो ना करो सुख दुख तो आएंगे ही। देर विल बी स्केर्सिटी, देर विल बी इम्पेडिमेंट, देर विल बी डिस्कम्फर्ट, देर विल बी अनहैप्पीनेस। इसको हम दूर नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते, लेकिन कृष्ण की सेवा में जब इसको जोड़ते हैं कोटि कोटि जन्मों के अनर्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहां बड़ा सुंदर शब्द प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं, नेचर ऑफ ट्रू लव इज सर्विस इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम्स। वास्तविक प्रेम अर्थात नाना प्रकार के दुख के कारण होने पर भी सेवा चलती रहे। तो यह बड़ा प्रमुख बात है जो कि हम यहां पर माधवेंद्रपुरी जी के चरित्र से सीखते हैं। इतनी समस्याएं आई, इतने ग्रीष्म ऋतु में उनको जाकर चंदन लाना पड़ा, इतना टन चंदन उनको उठा के लाना पड़ा, नाना प्रकार के सरकारी ऑफिशियल लोगों के साथ उनको बहुत कुछ सरकारी कार्य करने पड़े, नाना प्रकार के मुसलमानों का आक्रमण हुआ, इतना सब समस्या झेलते हुए गोपाल जी की सेवा में वो इतने मस्त थे उसको छोड़कर वो गए। क्यों? क्योंकि गोपाल जी की ही वो सेवा करना चाहते थे। तो सेवा अर्थात वो नहीं कि हम जैसा विचार करें, उन्होंने ये नहीं सोचा अरे अभी अभी तो हमने गोपाल की प्रतिष्ठा की है चलो आराम से यहां बैठते, नहीं चंदन ले आओ तो चले गए चंदन लाने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादीर न करे विचार, निज दुख विघ्नादीर न करे विचार। तो ये माधवेंद्रपुरी ने अपना गोल्ड स्टैंडर्ड हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया है कि भक्ति करनी हो तो कैसी करनी चाहिए, उस स्तर पे करना चाहिए कि हम अपने निजी सुख दुख के विषय में चिंतन ने करें। तो आगे कहते हैं, एतार गाढ़ प्रेम लोके देखाई ते गोपाल तारे आज्ञा दिला चंदन आनी ते। तो उनके गाढ़ प्रेम को प्रदर्शित करने गोपाल ने उनको आदेश दिया, जाओ चंदन ले आओ। तो प्रेम अर्थात ये कोई औपचारिकता मात्र के लिए शब्द नहीं है, प्रेम का अर्थ है कि हमको अपने स्वामी के लिए सर्वस्व समर्पित करना है। देर हैज टू बी सैक्रिफाइस, बिना इसके प्रेम निरर्थक है। तो इसलिए भगवान बतला रहे हैं, देखो माधवेंद्रपुरी का उदाहरण, मेरे सुख के लिए मुझे शीतलता प्रदान करने के लिए वो कितना कष्ट करते हुए गए और दर दर भटकते हुए जाकर चंदन ले आए, और जब गोपीनाथ के मंदिर तक वो वापस पहुंचे, बहु परिश्रमे चंदन रेमुना आनिला आनंद बड़िला मने दुख न गानिला। बहुत जब हम लोग परिश्रम करते तो हमको लगता है बहुत कसरत किया परेशान हो गया, नहीं, आनंद बड़िला मने दुख न गानिला, उनके मन में आनंद बढ़ गया। परीक्षा कोरिते कोइले आज्ञादान परीक्षा करिया शेषे होइला दयावान। तो आगे कहते हैं, परीक्षा करिते गोपाल कोइला आज्ञादान, केवल माधवेंद्रपुरी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्होंने आज्ञा दान दी। तो आज्ञा दान शब्द महत्वपूर्ण है, दान अर्थात हमको लगता है कि कुछ कृपा कर दी, हमको दान दे दिया, आज्ञा अर्थात लगता है कि अरे बाप रे जबरदस्ती कुछ करवा रहे हैं। लेकिन यहां शब्द का प्रयोग किया गया है, परीक्षा कोरिते गोपाल कोइला आज्ञा दान, अर्थात जो आज्ञा प्राप्त होती है, जो इंस्ट्रक्शन जो ऑर्डर भक्तों के समुदाय में हमको प्राप्त होता है, वास्तव में वो भक्तों की कृपा है, उसे आज्ञा दान मानना चाहिए। वो दान है, वो कृपा का एक सूचक है। परीक्षा कोरि यशेषे होइला दयावान, तो जब परीक्षा हो गई तो गोपाल बड़े दयालु हो गए और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि चलिए सब कुछ ठीक है, अब आपको वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं, मैं आपके भक्ति के कार्य से संतुष्ट हूँ, जो कुछ आपने यहाँ लेके आए वो यहीं गोपीनाथ के मंदिर में छोड़ जाइए। तो भगवान परीक्षा लेते हैं, जब परीक्षा लेते हैं तो लगता है ये परीक्षा कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन उचित समय आने पर भगवान हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे और हमारे प्रयासों से संतुष्ट होंगे। तो कृष्ण को संतुष्ट करना आसान भी है, लेकिन निर्विकल्प रूप से, प्रामाणिक रूप से उनकी सेवा करनी है। वी हैव टू सर्व इन एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर मैनर। तो ये यहाँ पर इस कथा का मूल सार यहाँ पर वो कर रहे हैं, और कितनी बढ़िया बात यहाँ पर बता रहे हैं कि निज दुख विघ्नाधीर नो करे विचार, अपने दुख के विषय में चिंतन नहीं किए, क्योंकि आप भक्ति करोगे, प्रचार करोगे, मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे, दुख तो आएगा ही, समस्याएं तो आएंगी ही। आप लोग सभी मंदिर के निर्माण में जब जाते हो, लोगों से कहते हो कि मंदिर में आइए, मंदिर के विषय में कुछ जानिए, कुछ इसके विषय में दान दक्षिणा कीजिए, तो ऐसा नहीं कि तुरंत सब लोग तैयार हो जाएंगे, समय लगेगा, और हो सकता है लोग नाना प्रकार से हास्यास्पद बातें भी करें, परिहास करें, लेकिन उसको सहन करना है। एक बार प्रभुपाद जी, यहाँ वर्णन आता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, तो भक्तों ने प्रभुपाद को पत्र लिखा कि लॉयर $7,000 मांग रहा है। प्रभुपाद ने कहा, अरे छोड़ो $7,000, जितने लोग जेल में गए हैं सब भक्त लोग मिलके कीर्तन करो। तो सब भक्त लोग प्रतिदिन कीर्तन आरंभ कर दिए, और वो कीर्तन इतना जबरदस्त होने लगा कि धीरे धीरे सारे कैदी कीर्तन करने लगे, पूरा जेल में सुबह से कीर्तन की गूंज उठ जाती थी। तो एक दिन वहां पर जेलर आया, और जेलर प्रवेश किया तो जेल का गार्ड है वो जेलर को देख के बोलता है, हरि बोल। तो जेलर घबरा गया, बोले क्या चल रहा है, हमारा जेल का गार्ड हरि बोल, ये क्या है, ये हरे कृष्णा वाले? जाके उनको कहा, आप लोगों को आज ही हम लोग रिहा करते हैं। तो भक्त लोग बोले, अरे अभी केस समाप्त नहीं हुआ, पहले क्यों रिहा करते हो? तो जेलर बोला, आप लोग जेल के अंदर बाहर से ज्यादा खतरनाक हैं, और अंदर रहोगे तो पता नहीं और क्या क्या होगा। तो भक्तों ने प्रभुपाद को पत्र लिख के कहा कि भाई ऐसा ऐसा जो है हमको छोड़ दिया गया है। तो प्रभुपाद ने कहा, यह कीर्तन का परिणाम है, व्यवधान आएंगे, अड़चने आएंगी, लेकिन बिना इच्छा के आप सेवा करोगे तो अवश्य ही आपकी, आपके जितने प्रयास हैं भगवान सफल करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। प्रभुपाद को भी अपने शिष्यों को ट्रेन करने बहुत कसरत लगा, काफ़ी कष्ट करके प्रभुपाद एक एक भक्त को ट्रेनिंग देते थे। एक भक्त प्रभुपाद के सामने स्टैंप लगा रहा था अपने एनवलप पर, और स्टैंप लगाते लगाते वो थूक लगा के उसको स्टैंप लगा रहा था। तो प्रभुपाद ने देखा और कहा, ये क्या बेकार बात है, छी, वैदिक संस्कार अर्थात पानी लगाओ और पानी से करो। तो पानी लेके करने लगा, तो पानी से कर रहा था, 99 जितने एनवलप थे समाप्त हुए, एक अंतिम रह गया और पानी खत्म हो गया। तो उसने सोचा, पानी खत्म हो गया, उठ के कौन लेके आएगा, और पहले मुझे इतना अनुभव है ही। तो दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, पीछे देखा, कोई नहीं दिखा। और कई बार हमको लगता है परमात्मा तो बस शो देखते रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। फट से उसने स्टैंप लिया, जीवा पे लगाया, दरवाजा खुला और प्रभुपाद खड़े थे वहां पर। और प्रभुपाद कहते, मैंने तुमको कहा था ये मत करो। तो प्रभुपाद कहते थे, एक एक भक्त को ट्रेन करना अर्थात बहुत रक्तपात करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कि एक दिन में सब हो जाता है। तो इसलिए निज दुख विघ्नाधीर न करे विचार, प्रगाढ़ प्रेमेर एई स्वभाव आचार। ये प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है कि व्यक्ति अपने दुख के विषय में चिंतन नहीं करता, वो सोचता है कि कैसे मैं भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकता हूँ। तो ये वास्तव में इस संपूर्ण कथा का सार है, और प्रभुपाद जी ने हम लोगों को इतना सुंदर अवसर प्रदान किया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के माध्यम से हम लोग प्रचार कर सकें, कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकें। और यहाँ श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इतने हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सभी लोग यहाँ एक साथ मिलकर सम्मिलित होकर कृष्ण की सेवा में लगे हैं, और आप लोगों के लिए स्वर्णिम अवसर है कि नए मंदिर का निर्माण आप कर सको। मैं यहाँ के सभी भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने इस प्रकार की दो दिवसीय कथा आयोजित की और आपके चरणों में कुछ सेवा करने का हमको अवसर प्रदान किया। आशा है कि आप लोग सभी इस तरह प्रभुपाद जी के संदेश को अपने जीवन में उतार कर अपने भक्ति के जीवन को और आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। और हम श्री तिरुपति बालाजी के चरणों में, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी के चरणों में और श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस तरह अपनी असीम अनुकंपा आप सभी पर वो बनाए रखें और आप सभी के हृदय में ये भक्ति की अभिलाषा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाए। इन शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। कृपया दो क्षण बैठे रहे। सर्वप्रथम MH12AX7023 इस नंबर की एक गाड़ी मंदिर के बाहर किसी व्यक्ति ने खड़ी की है। इस गाड़ी की वजह से यातायात में कुछ समस्याएं प्रकट हो रही है। कृपया जिस भक्त की ये गाड़ी हो इसे वहाँ से तुरंत हटाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान गौरांग प्रभु जी, आपने आपके इस दो दिवसीय कथा सत्र में भगवान के अर्चा विग्रह के बारे में और ख़ास करके उनके महाप्रसाद के बारे में जो महत्व बतलाया, इसी से प्रेरणा लेकर एक अज्ञात भक्त ने, वास्तव में अज्ञात ना होने के बावजूद भी वो अज्ञात रहना चाहता है, उससे प्रेरणा लेकर आज का प्रसादम फीस्ट का प्रायोजन किया है। और इस सुंदर भावना से प्रायोजित किया हुआ प्रसादम जो है, हम चाहते हैं हर कोई यहाँ से प्रसाद पाकर ही जाए। जो भक्त प्रसादम हॉल तथा मंदिर के सामने बैठकर कथा का श्रवण कर रहे थे, इस रसामृत का पान कर रहे थे, उनके लिए प्रसाद वितरण जो है ये मंदिर से बाहर निकलने के बाद रास्ते के दूसरे बाजू एक प्रांगण है, वहीं पर प्रसाद का वितरण हो रहा है। कृपया इसका ध्यान रखें, कोई भी भक्त प्रसाद लिए बिना यहाँ से न जाए। सुंदर कृष्ण प्रसाद, स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद वितरण के लिए उपलब्ध है, सभी भक्त प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाएंगे। हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी को, कृपया वे मंच पर आकर श्रीमान गौरांग प्रभु जी का सत्कार करें, उन्हें धन्यवाद प्रकट करें और इसके प्रतीक हेतु एक उपहार प्रदान करें। धन्यवाद करना चाहेंगे गौरांग प्रभु जी, हम पारंपरिक प्रति से हरी बोल बोल के हरी बोल।
एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश, जस्ट स्पीक इंग्लिश, फॉरगेट इट, हरी बोल, छोड़ दो छोड़।
हरे कृष्ण, I would like to express my deep heartfelt thanks to Gauranga Prabhu for bringing out such many jewel-like valuable lessons through this today's katha. As he was telling towards the end of the talk today about how that service attitude and dedication without any expectation is the highest goal of life. Once Ramanujacharya, while sitting in the sabha of all the devotees, he said, Lord Balaji or Srinivas, he appears on the top of the seven hills. Is there anyone here amongst my followers